तो लर्नर्स, हेलो लर्नर्स, होप कि आप लोग एग्जामिनेशंस जो आपके आ रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. और कंप्यूटर एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे. तो सबसे पहले जब हम कहते हैं कंप्यूटर, आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा. तो कंप्यूटर क्या है, पहले तो हम कंप्यूटर से ही शुरुआत करते हैं. तो कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो कंप्यूटर एक मशीन है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे काम करता है, या फिर वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है. और जो भी काम कंप्यूटर करता है, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है तो उसलिए उसको इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको हम प्रोग्राम कहते हैं. तो कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक डिवाइस है जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स हम उसको देते हैं, कमांड हम देते हैं, उस कमांड्स को वो के ऊपर वो फंक्शन करता है. और कंप्यूटर जो है वो सारी कॉम्प्लिकेटेड जो सिचुएशंस होती हैं या जो हम हमारी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सॉल्यूशंस हमें प्रोवाइड करता है. तो हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? हम डेटा देते हैं और वो उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और उससे हमको रिजल्ट देता है, जो भी रिजल्ट जो हम कंप्यूटर से चाहते हैं. तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में ट्रांसफ़र करता है और फिर हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है. तो डेटा जो है जो हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो वो किस तरह से हो सकते हैं? वो कोई मार्क्स भी हो सकते हैं जो किसी सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स के आए हों, या फिर वो किसी के नेम हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है, सेक्स, वेट, हाइट, ये सब जो चीज़ें जब हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि हम डेटा एंट्री कर रहे हैं या डेटा को कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं. तो कंप्यूटर को जो है हम जो भी वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उस टर्म्स में हम कंप्यूटर को डिफाइन करते हैं. तो कंप्यूटर क्या है? हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है, डेटा को स्टोर करता है और जैसे जैसी रिक्वायरमेंट हो उस तरह से डेटा को प्रोसेस करता है, और जो स्टोर्ड डेटा है उसको रिट्रीव करके, जब ज़रूरत हो उसको रिट्रीव करके, और जो रिजल्ट है उसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में प्रिंट करता है. क्योंकि जिस हम बार बार यही कह रहे हैं कि जैसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तो जो हम जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हमारे जो भी कमांड होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है, उस तरह से कंप्यूटर जो है हमें आउटपुट देता है और उस तरह से उस डेटा को वो प्रिंट करता है. तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या विशेषताएं हैं कंप्यूटर में, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत ही फास्ट स्पीड में काम करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे काम करता है, और बहुत सारा डेटा मिलियन टाइम्स फास्टर होता है कंप्यूटर का जो कैलकुलेशन है ह्यूमंस के हिसाब से. तो अगर हम कंपेयर करें ह्यूमन बीइंग से और फिर कंप्यूटर के बीच में, तो जो कंप्यूटर जो डेटा प्रोसेस करता है जिस स्पीड पे, वो मिलियन टाइम फास्टर होती है ह्यूमन बीइंग्स की स्पीड के हिसाब से. और वो जो है कंप्यूटर को फास्ट डेटा कंप्यूटर में स्टोर कर पाता है, इंफॉर्मेशन जो है वो उसकी मेमोरी में रहती है, जब रिक्वायरमेंट हो तो उसको प्रोसेस किया जाता है और डिजायर्ड रिजल्ट्स के टर्म्स में प्रोड्यूस किया जाता है. फिर जो नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, सबसे पहले तो हमने स्पीड की बात करी, फिर जब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो वह है स्टोरेज. तो कंप्यूटर्स में हम सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तो हम नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है. उसकी ह्यूज कैपेसिटी होती है डेटा स्टोर करने की, और जो फिजिकली बहुत ही शॉर्ट स्पेस ऑक्यूपाई करती है, बहुत ही कम स्पेस जो हमें फिजिकली हमें दिखाई देती है, लेकिन अगर हम डेटा जो उसके अंदर स्टोर्ड है अगर हम उसको पेपर के फॉर्म में रखेंगे तो वो कई कई गुना ज़्यादा होगी जो कि हम कंप्यूटर का एक साइज देखते हैं उसके अंदर वो डेटा स्टोर होता है. तो फिर नेक्स्ट जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो वो है एक्यूरेसी. तो जो कंप्यूटर की एक्यूरेसी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और हर कैलकुलेशन कंप्यूटर सेम एक्यूरेसी से परफॉर्म करता है. और जो भी कंप्यूटर में अगर कुछ गलतियां होती भी हैं प्रोसेसिंग में, या प्रोसेसिंग में तो ऐसा नहीं होती है लेकिन अगर रिजल्ट में कुछ भी गलती आती भी है तो वो गलती जो है, जो एरर्स होती हैं वो टेक्नोलॉजिकल की बजाय जो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जो उसमें एंट्री की गई है, खासकर जो डेटा एंट्री की गई है, उस गलतियों की वजह से हो जाती हैं, क्योंकि कंप्यूटर पे हम टोटली रिलाय कर सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोसेसिंग हुई है वो पूरी तरह से करेक्ट होगी। तो फिर जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, तो वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब कि कंप्यूटर जो है वो फ्री होता है, वो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टायर्डनेस, मतलब कंप्यूटर को थकान नहीं होती। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है वो 4 घंटे लगातार काम कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे टाइम के साथ में कम होने लगती है, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग्स, आखिर ह्यूमन बीइंग्स है, मशीन्स नहीं है इसीलिए, और क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं कि कंसंट्रेशन नहीं था इस टाइम पे, या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसंट्रेशन या थकान की वजह से कुछ गलतियां हो गई हों। इसलिए कंप्यूटर को चाहे जितनी भी कैलकुलेशंस करनी हो और जितनी भी बार करनी हो, वो हर बार सेम एक्यूरेसी और स्पीड से उसको करते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, वो है वर्सेटिलिटी। तो वर्सेटाइल होते हैं कंप्यूटर्स। वर्सेटाइल का जब हम कहते हैं तो मतलब है कि कंप्यूटर बहुत सारे डाइवर्स फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं, चाहे वो अकाउंटिंग करना हो, चाहे और भी कुछ बिजनेस रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर के ऊपर रखना हो, चाहे रिपोर्ट्स को कंप्यूटर में स्टोर करना हो, या फिर बिजनेस पर्पसेस के लिए हो, या फिर गेम्स को खेलने के लिए हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करने के लिए हो, या फिर आप उसमें नेट सर्फिंग करें, या फिर कुछ ईमेल भरने भेजने के लिए उसे यूज़ करें। इसलिए कंप्यूटर्स बहुत ही वर्सेटाइल होते हैं और बहुत ही डाइवर्स एरियाज़ में अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर्स की, वो होती है कम्युनिकेशन। तो कंप्यूटर्स जो है एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल होते हैं और उनको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। ऑफिसेज में भी हम देखते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और वो इंट्रानेट के फॉर्म में भी हो सकती है कि वो किस तरह एक दूसरे से थ्रू अटैच्ड केबल्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, और जो कि एक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर के थ्रू हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर्स की होती हैं, जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो है प्रोसेसिंग पावर। तो कंप्यूटर्स को हम देखते हैं कि काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं, मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी एक एक काफ़ी आगे हम चलते आए हैं और एक एक अलग मुकाम पे पहुंच गए हैं, जहां जो कंप्यूटर्स शुरुआत में होते थे बहुत भारी भरकम और बड़ी सी मशीन होती थी, आज हम जब कंप्यूटर्स को देखते हैं तो वो और भी ज़्यादा फास्टर हो गए, उनकी स्पीड इम्प्रूव हो गई है, छोटे हो गए हैं, चीपर हो गए हैं, मोर रिलायबल हम कह सकते हैं हो गए, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते जा रहे हैं। जब हम पहले देखते थे तो हमें कंप्यूटर्स में कीज़ को प्रेस करना पड़ता था और बहुत ज़्यादा ज़ोर से भी प्रेस करना पड़ता था, लेकिन जब हम आज का कंप्यूटर देखते हैं तो कई जगह हम देखते हैं कि कीज़ को हमें प्रेस ही नहीं करना है, सिर्फ टच करने से भी काम चलता है, और हमारे पास टच स्क्रीन्स हैं, ऐसे इस तरह के पैड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह के पेन्स हैं जिससे हम लिखते हैं और वो टेक्स्ट को रिकॉग्नाइज करके उसको रीडेबल फॉर्म में ले आता है। तो फिर इस तरह से जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हम बहुत दूर आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे बहुत ही अच्छी तरह से जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो इवॉल्व हो चुके हैं। फिर जो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हो सकता है आपने ये चीज़ें, जब आपने अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो या कंप्यूटर के बारे में जाना हो तो तभी भी आपने पढ़ा हो, और हो सकता है ना भी पढ़ा हो तो आप जान सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने कंप्यूटर देखा होगा, और अगर मुझे तो लगता है कि सबने ज़रूर देखा होगा, और अगर नहीं भी देखा है तो ज़रूर सुना तो होगा ही कंप्यूटर के बारे में। तो आप ये भी जान लीजिए कि कंप्यूटर के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो तीन होते हैं। तो इनपुट यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको कि हम सीपीयू कहते हैं, और आउटपुट यूनिट होती है। तो जब हम इनपुट यूनिट की बात करते हैं तो इनपुट यूनिट जो है, जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकते हैं, वो कहलाते हैं। जैसे कि हम शॉप पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो हम बहुत सारा सामान लेते हैं, तो वो एक बारकोड रीडर की से उसको स्कैन करते हैं, और जो भी चीज़ें होती हैं उसमें बारकोड रहता है, और बारकोड वो रीड करके अपने आप वो जो आइटम है उसकी कॉस्ट जो वो एक समरी बना रहे होते हैं, प्राइस लिस्ट बना रहे होते हैं, उसमें आ जाती है। इसी तरह से हमारे स्मार्ट कार्ड रीडर भी होते हैं, या फिर मैग्नेटिक डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप्स होते हैं, या लाइट पेंस होते हैं जिससे कि हम जो भी चीज़ें हैं उनको स्कैन करके या फिर जो भी इनपुट हम देना चाहते हैं उसको कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं. तो ये जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं कि हम किस इनपुट यूनिट्स हमारी क्या क्या हो सकती हैं. इसके बाद जो इनपुट यूनिट होती हैं उनका ये काम होता है कि वो इनपुट करें और उसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें. बाइनरी सिस्टम जो है वो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर समझ सकता है. इसके बाद हमने तीन यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं कि जो हमारी इनपुट यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और आउटपुट यूनिट है. तो इनपुट यूनिट के बाद हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे जिसको कि हम सीपीयू भी कहते हैं. तो सीपीयू को हम ये भी कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में कि वो कंप्यूटर की ब्रेन होती है. जिस तरह से हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास में ब्रेन होता है, ऐसे ही कंप्यूटर के पास में जो ब्रेन होता है उसको हम सीपीयू कहते हैं या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. तो जो काम हमारे लिए हमारी ब्रेन करती है, मतलब कि हम अपनी ब्रेन को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं वो काम हमारी ब्रेन हमारे लिए करती है. इसीलिए कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं सीपीयू उन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है. मतलब अगर कोई भी ग्राफिक्स हैं वो कंप्यूटर में स्टोर्ड हैं, कोई भी फोटो आप कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कोई प्रोग्राम स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, तो वो सब कंप्यूटर के पास सीपीयू में स्टोर रहता है. तो जो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है या फिर हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर का दिमाग है, ब्रेन है, तो इसके भी थ्री सब यूनिट्स में इनको डिवाइड किया गया है. तो जो इसके थ्री सब यूनिट्स होते हैं वो कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU जिसको हम कहते हैं, ये होते हैं. तो कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स हैं कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है. तो ये जो भी इसमें डेटा इनपुट किया जाता है इनको बाइनरी सिस्टम में, जो कि हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, उसमें कन्वर्ट करता है. फिर मेमोरी यूनिट होता है जो नेक्स्ट पार्ट है. तो मेमोरी यूनिट एक्चुअली वो पार्ट होता है, जैसे हम अपनी मेमोरी की बात करते हैं तो हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो स्टोर्ड रहती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में जो चीज़ें स्टोर्ड रहती हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट में स्टोर्ड रहती हैं. इसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर जिसको हम ALU कहते हैं वो होता है. तो जो ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितने भी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं या जितने भी कंप्यूटेशंस हैं, मतलब कि कोई एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं, ये सारे कंपैरिजन या जो भी कैलकुलेशन है वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में किए जाते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट की हमने बात करी थी, जो हम ब्रॉडर तीन ब्रॉडर यूनिट की बात कर रहे थे, जो हम CPU, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट, जो जब हमारा डेटा प्रोसेस हो जाता है फिर हम उसको आउटपुट देते हैं. तो आउटपुट यूनिट हमारी क्या होती है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में कुछ भी करते हैं तो जो उसका फाइनल रिजल्ट आता है वो या तो हमें मॉनिटर पे दिखाई देता है और या फिर हम उसको प्रिंटर से एज अ प्रिंट आउट बाहर निकाल लेते हैं. तो इसीलिए जो हमारे मॉनिटर हैं या फिर हमारा जो प्रिंटर है उसको हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं. तो जो आउटपुट यूनिट या हमें जो भी स्क्रीन पे चीज दिखती है वो उस लैंग्वेज में होती है जो है यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है उसे समझ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशंस हैं वो सब बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है कंप्यूटर के समझने के लिए. लेकिन जब हमें जो लैंग्वेज दिखाई देती है वो हमारे लिए कंप्यूटर उस फॉर्म में देता है जिससे कि हम उसे समझ सकें. फिर जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर. हालांकि कंप्यूटर हमारी बहुत मदद करता है, हर काम हमारा जल्दी होने लगा है, पहले के बजाय जो हम अपने ट्रेडिशनल वेज से काम कर रहे थे उससे हम धीरे धीरे मॉडर्न वेज की तरफ जा रहे हैं और जिसमें कंप्यूटर्स ने हमारा बहुत ही साथ दिया है. लेकिन उसके साथ में फिर भी कंप्यूटर्स में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जो आती हैं. सबसे पहला तो ये कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन कंप्यूटर्स की हाई होती है. उसके बाद डेली हम देखते हैं कि नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, नए नए वर्जन्स आ रहे हैं. तो जैसे जैसे नए नए वर्जन्स आते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है कि हम पुराने वर्जन्स को अपडेट करें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि अगर हमारा कंप्यूटर ज़्यादा पुराना हो जाता है या जो भी हम मशीन यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो जो हमारे पास आती हैं चीज़ें वो उस पर खुलती भी नहीं है, क्योंकि वो उसमें हमें कई बार दिखाता है कि दिस फॉर्मेट इज़ नॉट अवेलेबल हियर या ये यहाँ पे नहीं खुल सकता है. तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लेटेस्ट वर्जन से हम अपने कंप्यूटर्स को अपडेट करते रहें. फिर जैसा कि अब कई बार चीज़ें एब्सोल्यूट हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, तो उस पर भी एक कॉस्ट इनकर होती है कि कैसे हम नए जो हार्डवेयर है उसको खरीदें, और सॉफ्टवेयर जो हमारा अगर पुराना हो रहा है तो उसको हम टाइम टू टाइम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है, जब हम लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं, तो वो है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाए कि किस तरह से कंप्यूटर्स को यूज़ करना है। मे बी अगर वो अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से यूज़ करना है, अगर वो बैंकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस तरह से यूज़ करना है, और सॉफ्टवेयर के लिए भी उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो ट्रेनिंग होती है टू यूज़ दीज काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत कॉस्टली होती है, और इसमें भी स्टाफ को या जो भी पर्सनल इन्वॉल्व हैं उनको ट्रेन करने में हैवी कॉस्ट जो है वो जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको उठानी पड़ती है। फिर जब हम लिमिटेशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में सेल्फ डिसीजन लेने की जो पावर है वो लैकिंग होती है, क्योंकि हम बार बार यही बात करते हैं कि कंप्यूटर जो है एक मशीन है। तो क्योंकि वो मशीन है इसलिए वो ह्यूमन इंटरवेंशन पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं। तो वो बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म तो कर सकती है, लेकिन जहाँ भी डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस का वेट करती है। तो इसलिए कंप्यूटर इज़ अ गाइडेड मशीन विच कैन बी गाइडेड बाय द यूज़र, मतलब जो भी यूज़र कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चाहती है। उसके बाद जो नेक्स्ट अगर हम लिमिटेशंस की आगे बात करते हैं, तो वो है मेंटेनेंस। कंप्यूटर को बहुत ज़रूरी कि हमें अच्छे से कंप्यूटर को मेंटेन करें एक साफ़ सुथरे जगह पर, और एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे, ना कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। तो एक कंट्रोल्ड टेम्परेचर पे हमें कंप्यूटर को रखना चाहिए, जिससे हमारी मशीन अच्छी रहे। या फिर घर पे भी हम देखते हैं जिनके पास में लैपटॉप्स या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी होते हैं, तो ज़्यादातर उनको एडवाइस किया जाता है कि खाते वक्त कंप्यूटर को ना चलाएं या टाइपिंग ना करें, इससे कंप्यूटर की जो लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी रहती है। फिर जो नेक्स्ट लिमिटेशन है कंप्यूटर्स की, वो है हेल्थ के लिए हमारे उतना अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि जो लोग बहुत देर देर तक पूरा दिन ऑफिसेज में कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनको काफ़ी सारे हेल्थ हजार्ड्स रहते हैं, जैसे कि कईयों को पेन हो जाता है, बैक पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस है, मस्कुलर पेन है, आई स्ट्रेन है। तो इस तरह की दिक्कतें हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में जो ऑफिस में दिन भर कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं वो इन दिक्कतों को महसूस करते हैं, और इससे कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स पे बात कर रहे थे कि कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या हमारे सामने मुश्किलें हैं या क्या लिमिटेशंस आती हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर का क्या रोल है अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले सब लोग जो है मैनुअल अकाउंटिंग किया करते थे, लेकिन अब हम धीरे धीरे हम देखते हैं कि हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कंप्यूटर्स का क्या रोल है अकाउंटिंग में? तो सबसे पहले तो जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होती है, उसकी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके बारे में भी हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी हम जान लें, और इसी के साथ में हम जो रोल है कंप्यूटर्स का वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो जब हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं तो कंप्यूटर उसमें हमारी बहुत मदद करता है। जैसे कैश मेमो बनाना है, बिल्स बनाने हैं, इनवॉइस बनाने हैं, तो या जो भी कोई अकाउंटिंग वाउचर्स बनाने हैं, तो इसको हम ईजिली कंप्यूटर से जेनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम बहुत इजीली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के मदद से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर जैसे जो भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो जो भी हमारा जितने भी अकाउंट्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं, उनको एक यूनिक कोड जो है वो असाइन हो जाता है, और फिर अकाउंट्स की हम ग्रुपिंग करते हुए फर्स्ट स्टेज से नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ते चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्या होता है कि हम ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी बना सकते हैं, कि जैसे हमने अपना सबसे पहले हमने ट्रांजैक्शंस को एंटर किया, फिर जो डेटा है जो भी हमने एंटर किया जो हमारे ट्रांजैक्शंस में होता है, उससे हमारा लेजर अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर क्रिएट कर देता है। फिर जब हमारा एक बार लेजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है, फिर हमारा ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर हो सकता है कंप्यूटर की मदद से, जिससे हम जो भी हमारे अकाउंट्स हैं उनकी हम उनको वैलिडिटी या फिर हम उनकी एक्यूरेसी चेक कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ट्रायल बैलेंस की मदद से फिर जो है उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट भी जो है हम बना सकते हैं। फिर जब हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर बात कर रहे हैं, हम इसको CAS या कैश सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम इसके फीचर्स भी जान लें कि इसके क्या फीचर्स होते हैं, जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, उसके क्या जो है फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर तो ये है कि बहुत सिंपल और इंटीग्रेटेड होती है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इंटीग्रेट होता है, और जो भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट बिजनेस ऑपरेशंस हैं, जैसे सेल्स है, फिनेंस है, परचेज है, या इन्वेंटरी है, मशीनरी है, इन सबको इंटीग्रेट करके वो एक एक्यूरेट और अप टू डेट बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। फिर जो CAS है उसको इंटीग्रेट हम MIS के साथ भी कर सकते हैं, जो जिसको कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, या फिर हमारा मल्टीलिंगुअल डाटा है, या इस तरह के जो डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं उससे भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फीचर होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, वो होता है ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस में, और जो भी वाइटल, जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वाइटल इन्फॉर्मेशन है, उससे हमें एक्सेस भी मिल जाता है। फिर जो नेक्स्ट फीचर होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, वो है एक्यूरेसी और स्पीड। तो जिस क्योंकि हमें डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली होते हैं, जैसे डेटा एंट्री स्क्रीन्स उसमें आ जाती हैं, डेटा एंट्री के डिफरेंट फॉर्मेट्स, फॉर्म्स, उससे हम जो है फास्ट और एक्यूरेट डेटा एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, वो होती है स्केलेबिलिटी। तो स्केलेबिलिटी जो है किसी भी बिजनेस साइज के लिए, बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं या फिर छोटे से छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी इसको यूज़ कर सकता है। लेकिन चाहे जितना भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी साइज हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है। फिर जो नेक्स्ट से फीचर है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का, वो होता है रिलायबिलिटी। तो CAS जो है ये अश्योर करता है कि जो भी क्रिटिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेटली प्रोसेस हो, कंट्रोल्ड वे में हो, और सिक्योर्ड हो, पूरी तरह से सिक्योर्ड हो। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर होता है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का, वो होता है कि बहुत सारे फंक्शंस को एक्यूरेसी के साथ में परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो भी कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर की जब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें लेजर अकाउंट में जो हम पोस्टिंग करते हैं, वो जो पार्ट होता है वो टोटली एलिमिनेट हो जाता है। क्योंकि जब हम एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हैं, जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, तो अपने आप लेजर अकाउंट क्रिएट हो जाते हैं और अपने आप उसमें एंट्री हो जाती है, इसलिए हमें अलग अलग एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सबसे पहले, अब इसके बाद जब हमने सेलिएंट फीचर्स अकाउंटिंग सिस्टम के डिस्कस कर लिए हैं, यहाँ पे उस पर बात कर ली है, उसके बाद हम ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स पे थोड़ी सी बात करेंगे। जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन की भी बात करते हैं, तो हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में 5 हेड्स ब्रॉडली आते हैं, जैसे कि असेट्स है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, और एक्सपेंसेस हैं। तो अब जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं, करंट एसेट्स भी हो सकते हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि हमारे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, फर्नीचर फिक्स्चर्स हैं, या कुछ और भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम करंट एसेट्स की बात करते हैं तो कैश है, बैंक है, डेटर्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, या फिर लोन्स भी हो सकते हैं। इसी तरह से जब हम नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है कैपिटल है, वो शेयर कैपिटल भी हो सकता है, या फिर रिजर्व और सरप्लस भी हो सकता है। तो रिजर्व और सरप्लस भी हो, जो कैपिटल रिजर्व भी हो सकते हैं, जनरल रिजर्व भी हो सकते हैं, और या फिर बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है। इसी तरह से जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, वो सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, या क्रेडिटर्स, या डिफरेंट प्रोविजंस भी हो सकते हैं। उसी तरह से रिजर्व्स हमारे सेल्स से भी हमें जो मिलता है वो रिजर्व्स है, और या फिर कुछ और इनकम भी वो हो सकती हैं। इसी तरह जो हमारा लास्ट ग्रुप जिसमें हम बात कर रहे हैं, वो एक्सपेंसेस जो है, मटेरियल कंज्यूम भी हो सकता है, या जो हमने सैलरी एंड वेजेस पे करी हैं वो भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो हमने इनकर किए हैं वो भी हो सकता है, डेप्रिसिएशन जो हमने पे किया है वो भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो हमने 5 डिफरेंट हेड्स की हम बात कर रहे हैं, असेट्स हैं, कैपिटल, लाइबिलिटीज, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, इन तीनों को ब्रॉडली, मतलब आपको पता होना चाहिए जब आप किसी भी कोई भी जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस अकाउंट हेड को इफेक्ट करेगा। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप एंट्री करते हैं वो आपसे कंप्यूटर पूछेगा कि आप इसको किस हेड में डालना चाहते हैं, क्योंकि हर एक हेड को एक कोड असाइंड होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमने पांच हमने ग्रुप आइडेंटिफाई किए हैं जो मेन हेड्स हैं, जैसे असेट्स है, लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंसेस है और कैपिटल है। तो जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो उसको मेन कोड एक असाइन हो गया, मान लीजिए असेट्स को 1 हो गया, लाइबिलिटीज को 2 हो गया, इनकम को 3 हो गया, एक्सपेंसेस को 4 हो गया या फिर कैपिटल को 5 हो गया। इसी तरह से फिर हम उसमें फिक्स्ड एसेट्स, वो हमारा एक सब कोड हो जाता है, फिर हम उसको फिक्स्ड एसेट्स में डाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम फर्नीचर की एंट्री कर रहे हैं तो हम उसको पहले असेट्स में डालेंगे फिर हम उसको फिक्स्ड असेट्स में डालेंगे। तो ये बहुत ही क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस आइटम की हम एंट्री कर रहे हैं उसको हम कौन से हेड में डालेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से कंप्यूटर जो है वो एक यूनिक कोड जो है उसको असाइन करता है। जैसे असेट्स हैं उनको एक मेन कोड असाइन करा, फिर फिक्स्ड असेट्स को एक सब कोड असाइन करा, फिर जो हमारा हेड होगा उसको एक अकाउंट कोड असाइन होता है, और इस तरह से हर एक आइटम के लिए एक यूनिक कोड जो है वो बन जाता है, जिससे जब भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें मेनली दो बेसिक एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। एक तरह की एक्टिविटीज़ तो होती है जो वन टाइम एक्टिविटीज़ होती हैं, या फिर जो और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती है उनको हम रिकरिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो जब हम वन टाइम एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो वन टाइम बिजनेस एक्टिविटी से मतलब है कि वो चीज़ें क्रिएट करना जिसे हमें एक बार करना है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है तो हम एक बार करेंगे, अकाउंटिंग ईयर डालना है तो एक बार करेंगे, या फिर अगर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर या लेजर हेड्स अगर हमें क्रिएट करने हैं तो वो हम वन टाइम क्रिएट करेंगे। लेकिन जो रिकरिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे मतलब है कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम किस तरह से डाल सकते हैं, जो भी हमारे रेगुलर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो हम अपने कैश वाउचर्स के बेसिस पे कर रहे हैं या बैंक वाउचर्स के बेसिस पे कर रहे हैं या परचेज वाउचर्स डाल रहे हैं, उसको हम किस तरह से एंटर करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम ये जान पाएं कि क्या हमारी वन टाइम एक्टिविटीज़ हैं और कौन सी हमारी रिकरिंग एक्टिविटीज़ हैं। तो या फिर जैसे कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे डे बुक्स हैं या फिर लेजर है या फिर कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि उसको हम वन टाइम एक्टिविटी के अंदर लेंगे या फिर हम उसको रिकरिंग एक्टिविटी के अंडर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला तो है पासवर्ड सिक्योरिटी, कि जो भी हमारा सिस्टम है उसको हम किस तरह से पासवर्ड से सिक्योर कर सकते हैं। तो पासवर्ड एक इस तरह का मैकेनिज्म होता है जिससे कि यूज़र जो है अपने जो भी एक्सेस है, डेटा को जो भी एक्सेस है उसको सिक्योर कर सकता है। तो कोई भी पर्सन अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है, कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारा डेटा है और हर पर्सन को उसके एक्सेस की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उनको जिस डेटा को जिस एम्प्लॉई को उस डेटा की ज़रूरत है सिर्फ उनको ही उसका एक्सेस दिया जाए और एक लिमिटेड एक्सेस भी दिया जा सकता है। तो पासवर्ड की हम जब बात करते हैं तो पासवर्ड एक की है या फिर एक कोड है जिससे कि हम एक्सेस जो है वो सिस्टम में यूज़र का अलाउ कर सकते हैं या फिर डिसअलाउ कर सकते हैं, या फिर हम लिमिट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किस हद तक वो इस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का वो है डेटा ऑडिट। इस फीचर से होता क्या है कि हमें ये पता चलता है कि अगर डेटा में कुछ चेंजेस की जा रही है या फिर कुछ मैनिपुलेशन किया जा रहा है ओरिजिनल डेटा में तो उसको कौन कर रहा है। उसके लिए हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हैं कि ये पर्सन इस डेटा में गड़बड़ी कर रहा है, और या फिर हमें पता चल जाता है कि किसने इसमें ओरिजिनल डेटा में मैनिपुलेशन किया है। फिर जो नेक्स्ट हमारा फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का वो एक डेटा वॉल्ट एक फीचर होता है जिससे हम क्या करते हैं, एक एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं डेटा को, और ये जो एडिशनल सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं ये हम थ्रू डेटा इंक्रिप्शन करते हैं। जब हम इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि अगर डेटा किसी और के पास चला भी जाता है तो उस डेटा को वो डिकोड और इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं। कई कई बार हमारे जो सोशल एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं या फिर हमारे पास कुछ ऐप्स होते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास मैसेज आता है उसमें कि डेटा इज़ इनक्रिप्टेड एंड इट इज़ सेफ, इट कैन नॉट बी डिकोडेड। तो हम सब ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं कि इनक्रिप्शन क्या है। इनक्रिप्शन मतलब कि उसको एक ऐसी लैंग्वेज में ऐसे कोड कर देना कि जिसको कि डिकोड या फिर इंटरप्रेट कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। फिर कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के। कुछ सॉफ्टवेयर्स पे हम बात करेंगे, जैसे कि पहला सॉफ्टवेयर जिसपे हम बात करेंगे वो है पेरोल प्रोसेसिंग। तो जब हम पेरोल प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो उससे मतलब है कि किस तरह हम अपनी सैलरीज और वेजेस को हम थ्रू अकाउंटिंग प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर किस तरह से हम लीव रिकॉर्ड्स या फिर जो हमारा प्रोविडेंट फंड है उसका डिडक्शन, या जो हमारा और भी हमारे जो फंड्स हैं या ESI है, इसको किस तरह से कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करके हम इसको पूरी तरह से प्रोसेस कर सकते हैं। तो कंप्यूटर इसके लिए काफ़ी सारा डेटा जो है वो स्टोर करते हैं, जैसे एम्प्लॉय का क्या नेम है, फादर्स नेम क्या है, एम्प्लॉय कोड क्या है, बेसिक सैलरी क्या है, क्या परक्यूजिट्स दिए जाते हैं, क्या डिडक्शन होता है प्रोविडेंट फंड के लिए, ESI के लिए और एडवांस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये होता है। और इससे एक एक कंप्यूटराइज्ड स्लिप जो होती है वो भी जेनरेट हो जाती है, जिसको सैलरी स्लिप भी कहा जाता है, जिसमें सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की होती है। फिर जो और सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके बारे में पहले हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की भी बात करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर्स की बात करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट में करते हैं तो वो एक्यूरेट तो होती ही है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम कंजम्पशन भी उसमें काफ़ी लेस होता है। अगर हम मैनुअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से कंपेयर करते हैं तो कंप्यूटराइज सिस्टम में टाइम कंजम्पशन बहुत कम होता है। सॉफ्टवेयर्स इस तरह से ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे कि उनकी डिज़ाइनिंग इस तरह से होती है कि जो प्रोसेस होता है पोस्टिंग का और कास्टिंग का वो साइमल्टेनियसली होता रहता है, इसलिए हमें हर जगह अलग अलग जाके पोस्टिंग नहीं करनी होती है। एक बार जब हम जर्नल एंट्री कर देते हैं तो वो एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाती है, लेकिन हाँ हमें एक बार हेड्स को ज़रूर क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि लेजर है तो हमें उस सॉफ्टवेयर वो इस तरह से होता है कि ट्रांजैक्शन जो है वो लेजर में ऑटोमेटिकली कास्ट हो जाएगा, और जैसे ही कोई भी हम ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने आप वो लेजर में पोस्ट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें एक अकाउंटिंग हेड बनाना होता है, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि अकाउंटिंग कोड देते हुए हमें अकाउंटिंग बना वो क्रिएट करना पड़ता है हेड। उसके बाद जो ट्रायल बैलेंस है, जब हमने एक बार कंप्यूटर में एंट्री कर दी, अपने आप वो लेजर में पोस्ट हो गई, हम जब चाहे हम ट्रायल बैलेंस को व्यू कर सकते हैं। इवन अगर हमने एक ही एंट्री करी है, चाहे हमने खाली सिंगल एंट्री करी है, तो भी हम अपने ट्रायल बैलेंस को वहाँ पे कंप्यूटराइज जो हमारा ऐप सॉफ्टवेयर है उस पर हम उसको व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, तो जब भी जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जबकि हमने हो सकता है हमने इसके लिए भी खाली एक सिंगल एंट्री करी हो, लेकिन तभी भी हम इसको हर एक ट्रांजैक्शन के बाद एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, और एडवांटेजेस हर चीज़ें जो भी जिसकी भी हम बात करते हैं ज़रूर उसके साथ में बहुत सारी एडवांटेजेस होती हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल अच्छी तरह से कह सकते हैं कि जो हमारी एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस से बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात, तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं तो कंप्यूटर्स जो है वो एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ह्यूमन बींग्स टायर्ड हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर बींग अ मशीन उसमें ये चीज़ें नहीं आती कि वो 4 घंटे के बाद अगर टायर्ड हो गए तो उस तरीके से वो काम नहीं कर सकते या उनका कंसंट्रेशन ब्रेक हो रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के साथ में नहीं होती हैं। उसके बाद जो स्केलेबिलिटी जो है वो बहुत हाई होती है, वही जो सॉफ्टवेयर है हम उसको बहुत छोटे बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और हो सकता है हमारा बिजनेस इवॉल्व हो जाए, बहुत एक्सपैंड हो जाए, और तभी भी हम उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। फिर जब हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करते हैं, तो कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा हम देखते हैं कि हम शॉर्ट फॉर्म में उसको सिक्योर करके वहाँ पे रख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर में हम जितनी सारी फाइल्स हम स्टोर कर करके रखते हैं, अगर हम उसको पेपर के फॉर्म में रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी, और कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, और पेपर वर्क बहुत बहुत कम हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो हमारी एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा है डिसएडवांटेजेस के हिसाब से। डिसएडवांटेजेस हमारी यही है कि सॉफ्टवेयर्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, या मे बी जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या कभी डेटा करप्ट हो सकता है, कुछ फाइल्स करप्ट हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें भी हमारे पास सामने को आती हैं देखने को। लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं एडवांटेजेस की बात करते हैं तो वो डिसएडवांटेजेस पर बहुत भारी पड़ती है।